दानियल अध्याय 11। अब वो दानियल पर उन रहस्यों को प्रकट करना आरंभ करता है जिनका संबंध भविष्य से है। यहां दानियल कुछ ऐसा रोचक ब्यौरा देता है कि बाइबल के अधिकांश आलोचकों को दानियल की पुस्तक के 11वें अध्याय को ज्यों का त्यों स्वीकार करने में कठिनाई होती है। उनका कहना है कि इस पुस्तक को लिखने का समय वास्तव में सन 166 ईसा पूर्व है, जब इस पुस्तक में वर्णन की गई समस्त घटनाएं घट चुकी थी। क्योंकि जब तक ये घटनाएं पूरी ना हो गई होती, तब तक इनका वर्णन करना कैसे संभव हो सकता था। ये तो चमत्कार सा ही प्रतीत होता है, क्योंकि ये पुस्तक प्राचीन ग्रीक बाइबल सेप्टुएजिंट में सम्मिलित की गई थी। सेप्टुएजिंट का प्रकाशन लगभग 220 ईसा पूर्व का है। कहने का अर्थ यह है कि सेप्टुएजिंट के अनुवादकों ने दानियल की पुस्तक को दानियल के द्वारा ही लिखा हुआ एवं प्रामाणिक स्वीकार किया था। ये लगभग इन आलोचकों के द्वारा प्रस्तावित लेखन समय से लगभग 60 वर्ष पूर्व की बात है। अतः ये एक रोचक बात है कि ये पुस्तक आलोचकों के इस कथित समय से 60 वर्ष पूर्व उपलब्ध थी और उसका अनुवाद यूनानी भाषा में किया गया कि उसे सेप्टुएजिंट में सम्मिलित किया जाए। वे कहते हैं कि आकंडे झूठे नहीं होते, परंतु झूठे लोग आकंडे को झूठा प्रस्तुत कर देते हैं। दानियल अध्याय 11 पद 1 और 2। दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया, और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूं। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे। उस समय दारा राजा था। जो 3 राजा आने वाले थे वे शयर्ष, अर्थशत्र और दारा थे। इतिहास में उन्हें कैम्बिसिस, सूडोस्मेरडिस और डेरियस हिस्टापिस के नाम से जाना जाता है। अतः भविष्यवाणी के अनुसार 3 राजाओं का उदय होगा। दानियल अध्याय 11 पद 2 में आगे लिखा है, और 4था राजा उन सभी से अधिक धनी होगा, ये शयर्ष है, और जब वो धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। शयर्ष बहुत धनी और सामर्थी राजा था। वो यूनान के विरुद्ध एक अभियान चलाता है और उसे हराने में सामर्थी भी था, परंतु फिर भी यूनान को नहीं जीत पाया। अतः ये विशेष भाग भी पूरा हो गया था। वहां 3 राजा थे, शयर्ष, अर्थशत्र और दारा द्वितीय, और तब 4था राजा शयर्ष, जो दूसरों से ज्यादा धनी था, जिसने यूनान के विरुद्ध विजय अभियान चलाया था। परंतु तब यूनान उठेगा। दानियल अध्याय 11 पद 3 और 4। उसके बाद एक पराक्रमी राजा सिकंदर महान उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा, और जब वो बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और ना उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। भविष्यवाणी के अनुसार सिकंदर महान उठेगा, परंतु जब उसका अंत होगा तब उसका राज्य उसके परिवार या उसके वंशजों को नहीं मिलेगा और ना ही उसके प्रभुत्व को पूरी तरह से कोई प्राप्त कर पाएगा। दानियल अध्याय 11 पद 5। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहां तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। दक्षिण का राजा, जी हां, वो सेनापति तौलमी था जिसने मिस्र पर कब्जा किया था। सेनापति सेल्यूकस ने सीरिया पर कब्जा किया और अन्य सेनापतियों में से एक ने यूनान पर और दूसरे ने थ्रेसिया पर कब्जा कर लिया था। इस तरह यूनान चार उपनिवेशों में बट गया, लेकिन अब वो केवल यूनानी राज्य और थ्रेसियन राज्य के बारे में नहीं बताता है, वो केवल सीरिया और मिस्र के बारे में बोलता है, क्योंकि यही वे दोनों हैं जिनका संबंध इसराइल से रहा था, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में इसराइल युद्ध क्षेत्र बन जाता है या उनकी सेनाओं को इसराइल से होकर जाना पड़ता था। अब वो कुछ ऐसे रोचक ब्यौरे देना आरंभ करता है जो इतिहास में पूरे हुए थे। दक्षिण का राजा सामर्थी होगा, उसकी प्रभुता एक बड़ी प्रभुता होगी। दानियल अध्याय 11 पद 6। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी, उत्तर का राजा और दक्षिण का राजा दोनों लड़ रहे थे, परंतु अंत में उन दोनों में समझौता हो जाएगा। दानियल अध्याय 11 पद 6 में आगे लिखा है, और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बहुबल बना ना रहेगा और ना वो राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वो स्त्री अपने पहुंचाने वालों और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। अब ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा ने अपनी बेटी बर्निस उत्तर के राजा को विवाह में दे दी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से तलाक ले लिया था। तोलेमी का मन जब बर्निस से भर गया, तब वो अपनी पहली पत्नी को वापस ले आया, जिसने उसे और बर्निस और उसके बेटे को भी जहर देकर मार दिया, क्योंकि यदि बर्निस का बेटा जीवित रहता तो प्रथा के अनुसार वही राज सिंहासन पर बैठता, परंतु अब क्योंकि वे मर गए, इसलिए पहली रानी के पुत्रों को राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिल गया। यहां दानियल इन भावी घटनाओं और षड्यंत्रों के बारे में बताता है। तब बर्निस का भाई मिस्र से सेना लेकर आया और तोलेमी की पहली पत्नी को मार डाला, जिसने अपने पति को तथा उसकी बहन को जहर देकर मारा था, और अपने संभालने वालों से यहां अर्थ है उसी परिवार का एक सदस्य जो रिश्ते में बर्निस का भाई था। दानियल अध्याय 11 पद 7। फिर उसकी जड़ों उसका भाई में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी, वो सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। ये तोलेमी युर्गेतस था जो बर्निस का भाई था, और यहां दिए गए विवरण के अनुरूप ही उसने सीरिया पर आक्रमण किया था। दानियल अध्याय 11 पद 8 से लेकर 10 तक। तब वह उनके देवताओं की ढाही हुई मूर्तें और सोने चांदी के मन भाव पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वो कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वो राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमड़ने वाली नदी के नाई आकर देश के बीच होकर जाएंगे। ये उत्तर देश के राजा का बेटा है जिसे युर्गेतेस के द्वारा हराया गया था। वे लोगों की एक बड़ी सेना इकट्ठी करेंगे और वे उमड़ने वाली नदी के समान आकर देश के बीच होकर जाएंगे। दानियल अध्याय 11 पद 10 से लेकर 12 तक। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे, तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वो राजा लड़ने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वो भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीत करके उसका मन फूल उठेगा और वो लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वो प्रबल ना होगा। ये तौलमी फिलोफेटर है जो उस समय दक्षिण का राजा था। उसने एक बड़ी सेना इकट्ठी की और उत्तर के राजा के विरुद्ध आया, जबकि उसने उसे हरा दिया और बुरी तरह लूटा था, परंतु वो ना तो इसका पूरा फायदा उठा सका और ना ही लोगों को आधीन कर पाया। वो अपनी अयाशी या व्यभिचार में ज्यादा मशगूल था, इसलिए यहां कहा गया है और वो लाखों लोगों को गिराएगा। उसने दुश्मन की सेना का नाश भी किया, परंतु वो प्रबल ना होगा, वो इसका फायदा नहीं उठाएगा। वो मिस्र में जाकर अपनी अय्याशी और व्यभिचार की जिंदगी जिएगा। दानियल अध्याय 11 पद 13 और 14। क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहली से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वो निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे। उत्तर का राजा एंथियोकस मेगास वापस आया। वो एंथियोकस महान के नाम से जाना जाता था, परंतु बहुत से लोग उठेंगे। और वास्तव में इस जगह मकदूनिया का फिलिपुस, कुछ विद्रोही, कुछ यहूदी जो बुलाए गए थे मिस्र के विरुद्ध उसके साथ आ मिले। दानियल अध्याय 11 पद 14 से लेकर 17 तक। वरन तेरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर एंथियोकस महान देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के ना तो प्रधान खड़े रहेंगे और ना बड़े वीर, क्योंकि किसी में खड़े रहने का बल ना रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वो अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वो हाथ में सत्यनाश के लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा और उसका सामना करने वाला कोई ना रहेगा। तब वो अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा, और वो उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वो स्थिर ना रहेगी, ना उस राजा की होगी। अब यूर्गेतिस दक्षिण में मिस्र का राजा था। जिस समय उसकी आयु 7 साल की थी उस समय वो राजा बन गया था, अतः उस समय वो केवल नाम मात्र का राजा था। लेकिन एंथियोकस महान ने अपनी बेटी क्लियोपैट्रा को लेकर एक सौदा किया कि उसकी शादी यूर्गेतिस से होना चाहिए। उसने ये सोचकर ऐसा किया कि जब वो मिस्र के राज्य में रानी बनेगी तब अपने पिता के काम आएगी, परंतु जब क्लियोपैत्रा का शादी यूर्गेतिस से हो गई तब उसने अपने पिता का पक्ष लेने की जगह अपने पिता के विरुद्ध अपनी पति के साथ हो गई, अतः उसकी ये योजना बेकार गई। दानियल ने इस योजना के बारे में और उसके असफल होने के बारे में बताया था। अगर उसने केवल बाइबल पढ़ी होती तो वो अपनी बेटी को वहां भेजने से पहले ये जान लेता। वो उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वो स्थिर ना रहेगी, ना उस राजा की होगी। अगर उसने ये पहले पढ़ लिया होता तो वो उसे अपनी पुत्री विवाह में नहीं देता। दानियल अध्याय 11 पद 18। तब वो द्वीपों की ओर मुंह करके, वो मिस्र को जीत न पाने के कारण 300 जहाज इकट्ठे करके भूमध्य सागर में रोम के विरुद्ध युद्ध करने निकल पड़ा। उस समय तक रोम संसार में एक शक्ति रूप में उभरने लगा था, अतः उसने अपना मुंह द्वीपों की ओर कर लिया था। दानियल अध्याय 11 पद 18 से लेकर 20 तक। बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वो अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वो ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता ना रहेगा। अब क्या हुआ? बेशक वो रोम के द्वारा हराया गया था और वे निश्चय ही उससे इन सारी लड़ाइयों के खर्चा लेंगे, इसलिए उस पर सारा खर्चा निर्धारित किया गया जो उसे हर साल देना था। वह और उसके लोग एक मंदिर में जाकर वहां का सारा खजाना लूट लेते हैं, जिसके कारण उस शहर के लोग इतना क्रोधित हो जाते हैं कि उसे मार डालते हैं। वो गिरता है, वो ठोकर खाकर गिरता है और इतिहास से विलोप हो जाता है। दानियल अध्याय 11 पद 20। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा, उसका बेटा सेलूकस फिलोपेतर, जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को, वो कर वसूल करके रोम का शुल्क देने की कोशिश करता है। दानियल अध्याय 11 पद 20 में आगे लिखा है, शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वो क्रोध व युद्ध किए बिना ही नष्ट हो जाएगा। एक बहुत ही छोटे राज्यकाल के बाद उसे जहर देकर मार दिया गया था, क्योंकि लोगों को उसका कर द्वारा पैसा वसूलना अच्छा नहीं लगा था। दानियल अध्याय 11 पद 21। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य एंटियोकस एपिफेनिस उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो भी वो चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। एंटियोकस एपिफेनिस सचमुच में एक बेईमान मनुष्य था। दानियल अध्याय 11 पद 22 से लेकर 24 तक। तब उसकी बुजारूपी बाढ़ से लोग, वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे, क्योंकि वो उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वो प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा और जो काम ना उसके पुरखा और ना उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वो करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। एंटियोकस एपिफेनिस अपना विजय अभियान आरंभ करेगा और ऐसा काम करेगा जैसे उसके पुरखाओं ने ना किया था। जो धन उन्होंने अपने लिए एकत्रित किया था उसे उसने सेनापतियों और जो लोग उसके संग थे उनमें बांट दिया। अतः इस प्रकार लूट को बांटने के उसके अभ्यास की भविष्यवाणी दानियल द्वारा दी गई थी। वो लूटी हुई धन संपत्ति उसमें बांटा करेगा। दानियल अध्याय 11 पद 24 और 25। वो कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा, तब वो दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थी सेना लिए युद्ध तो करेगा परंतु ठहर ना सकेगा क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। अतः वो मिस्र के विरुद्ध एक बड़ी सेना लेकर आया और मिस्र ने उसे युद्ध किया परंतु उसने मिस्रियों को हरा दिया। दानियल अध्याय 11 पद 26 और 27। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के नाई चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे। वे रोमी सरकार के द्वारा रोके गए थे परंतु दोनों ने बुराई करने की युक्ति की। आप इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत रोचक घटनाएं पाएंगे। मिस्र का राजा और उसका भाई जो सिकंदरिया में था दोनों बहुत बुराई और चलाकी कर रहे थे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे। इस प्रकार राजाओं ने बुराई की। दानियल अध्याय 11 पद 27 में आगे लिखा है, यहां तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे परंतु इसे कुछ बनना पड़ेगा। वे एक दूसरे से झूठ बोल रहे थे, झूठी संधि कर रहे थे परंतु उसे पूरा करने का उनका कोई इरादा ना था। दानियल अध्याय 11 पद 27 से लेकर 29 तक। क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय होने वाला है, तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा और वो अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वो फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, अतः वो फिर से आक्रमण करता है। एंटियोकस एपिफेनिस फिर से मिस्र पर चढ़ाई करता है। दानियल अध्याय 11 पद 29 और 30। परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश ना चलेगा, क्योंकि कितियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे। सत्य तो यह है कि इस बार जब वो सिकंदरिया में आया तब वहां बंदरगाह में रोम के जहाज थे और रोम का सेनापति पॉपिलियस लेनास ने उसके पास आकर कहा, रोम की सेनेट ने ये आज्ञा दी है कि तुम अपनी सेना के साथ वापस घर जाओ। और उसने कहा, मैं अपने लोगों से सलाह करूंगा और रोम को अपना उत्तर दूंगा। और रोम की सेनापति पॉपिलियस ने एक लकड़ी ली और रेत में उसके चारों ओर घेरा बनाकर कहा, आप रोम की सेनेट को बता दें, मैंने निर्णय कर लिया है, मैं घर जाऊंगा। यहां पहले ही बताया जा चुका है कि जब वो वहां आएगा तो रोम की नौसेना वहां सिकंदरिया की बंदरगाह पर उसका इंतजार कर रही होगी। सब कुछ पहले ही बताया जा चुका था। आश्चर्य है कि परमेश्वर इन सब बातों के बारे में जो अभी तक घटी भी नहीं थी इतने विस्तार से बता रहा था। अब वो रोम के द्वारा रोके जाने या डांटे जाने से नाराज था। उसने अपने इस गुस्से को इसराइल देश पर उतारने का निश्चय किया। सीरिया वापस आते समय वो यरूशलेम में आया और पवित्र स्थान को अपवित्र करने की इच्छा की। दानियल अध्याय 11 पद 30 और 31। और वो उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वो लौटकर पवित्र वाचा को तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। वो वापस यरूशलेम में आया और उसने मंदिर को अपवित्र किया। उसने परमेश्वर की वेदी के ऊपर एक और वेदी बनाई और उस वेदी पर सुअर की बलि दी। दानियल अध्याय 11 पद 32। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ध्यान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। उसके द्वारा मंदिर को अपवित्र करने से लोग इतने क्रोधित हुए कि जूडास मैकबियस ने जोशीले कट्टर यहूदियों को एकत्रित किया और उन्होंने सीरिया पर छापामार आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने सीरिया के उस प्रत्येक सेना दल को जो उनके विरुद्ध भेजा गया था हरा दिया और अंततः उन्होंने मंदिर को दोबारा ले लिया और उसे पवित्र किया। परमेश्वर के मंदिर को जूडास मैकबियस द्वारा फिर से जीतकर उसका शोधन करने को हनुका का पर्व कहते हैं। अतः वे लोग जो अपने परमेश्वर को जानते हैं, जैसे जूडास मैकबियस और मैकबियन भाई, वे सामर्थी होंगे और अद्भुत कार्य करेंगे। दानियल अध्याय 11 पद 33। और लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जूडास और उसके भाई तलवार से मार दिए गए। दानियल अध्याय 11 पद 34 और 35। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। ये दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। अब इस जगह दानियल की भविष्यवाणी अंत समय में चली जाती है और वो उस मनुष्य को देखता है जिसे सामान्यतः मसीह विरोधी कहा जाता है। पवित्र शास्त्र में इसे अनंत मृत्यु का पुत्र या पाप का मनुष्य या पशु भी कहा गया है। दानियल अध्याय 11 पद 36। तब वो राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा, मसीह विरोधी, और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा या बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा, और जब तक परमेश्वर का क्रोध ना हो जाए। पुराने नियम का ये वचन महाक्लेश के युग से संबंधित है। दानियल अध्याय 11 पद 36 में आगे लिखा है, तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा जब तक महाक्लेश पूरा ना हो जाए। दानियल अध्याय 11 पद 36 और 37। क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वो अवश्य ही पूरा होने वाला है। वो अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता ना करेगा, स्पष्ट है कि वो यहूदी होगा। दानियल अध्याय 11 पद 37 में आगे लिखा है, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा। स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता ना करेगा, इसका अर्थ दो में से एक हो सकता है। प्रत्येक यहूदी स्त्री की मनोकामना थी कि उसे मसीह की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, अर्थात परमेश्वर उसे चुने कि मसीह उससे आए। परंतु मरियम ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसे परमेश्वर ने चुना था। ये औरतों की अभिलाषा का वर्णन है, इसलिए यहूदी माताएं अपने बच्चों का नाम यहोशू रखती है, इस आशा से कि इसराइल की मुक्ति के लिए परमेश्वर उसका उपयोग करे। आजकल ये बहुत दिलचस्प बात है कि मुसलमानों की एक शाखा है जो ड्रूस के नाम से जानी जाती है। ये एक बहुत गुप्त धर्म है। सच्चाई तो ये है कि लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, केवल उनके याजक जानते हैं कि वे क्या विश्वास करते हैं। वे लोगों को नहीं सिखाते, ये एक गुप्त धर्म है। केवल याजक ही सारी आराधना करते हैं और वे ही इस रहस्य को जानते हैं, कोई और नहीं जानता। वे इस रहस्य को किसी पर प्रकट नहीं करने की कसम खाते हैं। अब अगर आप इन ड्रूसों के गांव में जाएं और इन याजकों को देखें तो आप इनके हाथ पर एक विशेष पट्टा बांधा पाएंगे और उसी के द्वारा आप ये जान पाएंगे कि वे याजक हैं। केवल ये ही नहीं, वे झोले नुमा ढीली ढीली पैंट जैसा एक प्रकार का वस्त्र पहनते हैं। इस तरह का बड़ा झोला पहनने का कारण है कि ड्रूस धर्म का ये मानना है कि मसीह पुरुष से पैदा होगा और इसी कारण वे ये बड़ा झोला सामने पहनते हैं कि अगर उन्होंने गर्भ धारण कर लिया तो। ये सच है, मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं और आप इन ड्रूस गांवों में जा सकते हैं और इन लोगों को आगे लटके हुए झोले के साथ इस आशा में चलते हुए देखना बहुत आश्चर्यजनक और रोचक लगता है कि हो सकता है परमेश्वर उन्हें मसीह को पैदा करने के लिए चुन ले और वे गर्भ धारण कर लें। इसलिए स्त्री की इच्छा या चाहत इस अर्थ में यीशु मसीह के संदर्भ में है। मसीह विरोधी ना तो अपने पुरखाओं के परमेश्वर और ना ही मसीह यीशु का सम्मान करता। ये वो आदमी है जो निंदा की बातें कहता है। दानियल अध्याय 11 पद 37। ना किसी देवता की, क्योंकि वो अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। अतः कोई शक नहीं कि यही सही अनुवाद है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि वो एक समलैंगिक होगा, औरत की इच्छा के संबंध में नहीं। परंतु इब्रानी लोगों के संदर्भ में समलैंगिक बताने के बजाय इस सत्य को बताना ज्यादा उचित है कि वो यीशु मसीह का आदर नहीं करता। दानियल अध्याय 11 पद 38। वो अपने राज पद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी ना जानते थे। वो सोना चांदी मणि और मन भावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। देखिए कैसे आज लोग शक्ति के देवता का आदर सोने और चांदी से करते हैं। क्या आपको मालूम है कि प्रति वर्ष हथियारों पर अरबों रुपयों का खर्च आता है? संसार के संसाधनों का कैसा दुखद उपयोग है ये। लेकिन ये सब उन मनुष्यों के लिए हो रहा है जो शक्ति के देवता की उपासना करते हैं। दानियल अध्याय 11 पद 39। उस पराये देवता के सहारे से वो अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कोई उसको माने उसे वो बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वो बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अतः इसराइल की भूमि अपने लाभ के लिए बांट देगा। दानियल अध्याय 11 पद 40 से लेकर 41 तक। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बावंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वो बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वो शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मुआबी, जो जॉर्डन है, और मुख्य मुख्य अमोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। अतः जॉर्डन मसीही विरोधी के द्वारा नहीं लिया जाएगा, जबकि इसराइल ले लिया जाएगा। दिलचस्प, क्योंकि इस समय यहूदी बचने के लिए जॉर्डन में पेत्रा पत्रों के शहर को भाग जाएंगे, जहां परमेश्वर उन्हें 3.5 साल तक बचाकर रखेगा और उनकी सुधि लेगा। ये वो समय होगा जब परमेश्वर अपने क्रोध को पृथ्वी पर उंडेलेगा। अतः एदोम या जॉर्डन बच जाएंगे और मसीह विरोधी मिस्र की ओर बढ़ जाएगा। दानियल अध्याय 11:42। वो कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा, वो मिस्र की भूमि ले लेगा। दानियल अध्याय 11:43-45 तक। वो मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मन भावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वो पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा, और वो दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा और कोई उसका सहायक ना रहेगा। ये मसीही विरोधी का विवरण है। वो यूरोप के संयुक्त राष्ट्रों का नेता होगा। वो अफ्रीका पर कब्जा करने के लिए अफ्रीका की ओर बढ़ेगा। मिस्र को लेने के लिए उसे इसराइल से गुजरना होगा। मिस्र को जीतकर वो लीबिया और इथियोपिया की ओर बढ़ेगा। उसी वक्त वो सुनेगा कि चीन और रूस की सेनाएं उसके विरुद्ध आ रही है। अतः वो अपने अफ्रीका अभियान से वापस लौटेगा और इसराइल में हर मिगदोन की घाटी में उनका सामना करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार चीन की विशाल सेना जब फरात नदी को पार करेगी, तब नदी पूरी सूख जाएगी। अब रूस में बची हुई सेना यूरोप की संगठित सेना के विरुद्ध मोर्चा बांधेगी। इस समय अमेरिका की सेना यूरोप के साथ होगी। ये अंतिम बड़ा विश्व युद्ध होगा। इस युद्ध का ज्यादातर हिस्सा इसराइल में हर मिगदोन की तराई या घाटी में होगा। इसे प्रायः हर मिगदोन का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को जो अवश्यंभावी बनाता है वो ये है कि जब वो अफ्रीका के विरुद्ध जा रहा होगा, तब उसको चीन और रूस की संगठित सेना के बारे में समाचार मिलेगा कि वे उसके विरुद्ध आ रहे हैं। तब वो बहुत गुस्से में पलटेगा और जिस जगह वे मिले हैं वो हर मिगदोन की घाटी होगी। उस समय पृथ्वी के घात किए हुओं के कारण खून घोड़े की लगाम तक सारी हर मिगदोन घाटी में बहेगा। इस बड़े नरसंहार और खून खराबे में लाखों करोड़ों नाश होंगे।